Hare Krishna. Asangshayang Mahabaho Mano Durnigrahang Chalam Abhyasena Tu Kaunteya Vairagyena Cha Grihate. Shri Bhagavan Ubacha Asangshayang Mahavaho Mano Durnigrahang Chalam Abhyasena Tu Kaunteya Vairagyena Cha Grihate. Asangshayang Mahavaho Mano Durnigrahang Chalam Abhyasena Tu Kaunteya Vairagyena Cha Grihate. श्री भगवान उवाचा, भगवान ने कहा, असंशयम, निस्संदेह, महाबाहो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, मनः, मन को, दूर निग्रहम, दमन करना कठिन है, चलम, चलायमान, चंचल, अभ्यासेना, अभ्यास द्वारा, तू, लेकिन, कौंतेय, हे कुंतीपुत्र, वैराग्येना, वैराग्य द्वारा, चा, भी, गृहते, इस तरह वश में किया जा सकता है। इस श्लोक का अनुवाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में लाना, वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। आप भी बोलिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करना की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही साथ वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ये संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा से प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। ये व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये ऐसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोड़ से भूख की तृप्ति प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। ये उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इसका पहले श्लोक में अर्जुन भगवान को क्या पूछा था या भगवान को क्या बताया था आपको याद है? हाँ, क्या भगवान को अर्जुन बोला था? हाथ उठाइए, कौन कौन जानते हैं, हाथ उठाइए। आपको हाथ उठाना बोला, मुंह नहीं बोला। अच्छा बोलिए, बताइए क्या बोला था। प्रमाथी बलवदृढ़ बायोर। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, ऐसे भगवान अर्जुन भगवान को बोल रहा था। ये षष्ठ अध्याय में भगवान क्या किसके बारे में बताया था, किस विषय में भगवान ने उपदेश दिया है इस अध्याय में, षष्ठ अध्याय में? ओके पारुल, अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग का अंत में क्या फल प्राप्ति होता है? अष्टांग योग का अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? समाधि। वो समाधि में क्या होता है? समाधि में हाँ क्या होता है मैं बताया था। समाधि में आप बताइए क्या होता है? समाधि में भगवान को दर्शन होता है। भगवान को जो दर्शन परमात्मा के रूप में हृदय में जो भगवान का दर्शन वो ही है समाधि। तो जब भगवान को दर्शन होता है तो भौतिक अनुभूति भौतिक चेतना रहता है बाहर की ओर चेतना तब चल सकता है नहीं, मन तब भगवान में ही स्थिर हो जाता है। उस अवस्था को समाधि कहा जाता है ना। तो समाधि में और भगवान ने अर्जुन को क्या बताया समाधि अवस्था में क्या होता है? तब अंदर और बाहर हर जगह में ही भगवान को ही दर्शन होता है। जब अंदर की तरफ देखते हैं तो भगवान को देखते हैं, बाहर की तरफ जब देखते हैं वहां भी भगवान को ही देखते हैं। कैसे? क्योंकि सब हर वस्तु कैसे भगवान के साथ युक्त है यह दर्शन तब होता है। तो ये अष्टांग योग का अंतिम अवस्था है। उस अवस्था में मन भगवत चरण में पूर्ण रूप से अर्पित हो जाता है। परंतु अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहा है कृष्ण मेरा मन तो इतना चंचल है, चंचलंग ही मन कृष्ण, मतलब मन बहुत ही चंचल है। चंचल का मतलब क्या है? हर समय जो चलता है, स्थिर नहीं रहता है, हर समय चलता रहता है, उसका मतलब होता है चंचल। और चंचल का विपरीत अवस्था क्या है? स्थिर या शांत। स्थिर या शांत। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि चंचल ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है, और उसके साथ वो प्रमाथी है। प्रमाथी का मतलब पागल जैसा है। जो पागल है उसको कुछ समझा सकते हैं? कुछ नहीं। वो कुछ सुनता नहीं है, समझता नहीं है, वो अपना इच्छा के अनुसार वो अपना पगलापन करता है। प्रमाथी, प्रमत्त, मत्त, प्रमाथी बलवद, और बलवद का मतलब है बहुत शक्तिशाली है, और दृढ़म ये बहुत कठिन है। तस्याहं निग्रहं मन्ने, उसको निग्रह करना मतलब उसको वश में लाना, उसको दमन करना। तस्याहं निग्रहं मन्ने वायोर इव हि सुदुष्करम्। वायु को वश में लाना जैसा दुष्कर है, कठिन है, असंभव है, वैसा ही मन को वश में लाना असंभव है। अर्जुन भगवान को ऐसा बोला। तो ये बात क्या सही है? ना कि अर्जुन आलसी था उसलिए भगवान कैसे कह रहे हैं। अर्जुन ना लायक था, अर्जुन निकम्मा था उसलिए कह रहा है। अर्जुन निकम्मा था, बल्कि हम लोग बहुत काम के हैं। हम बहुत एफिशिएंट हैं, उपयुक्त हैं, हम बहुत लायक हैं, है क्या? नहीं। अर्जुन को, अर्जुन कैसा था? अर्जुन अकेला सारे कुरु सैन्य को हरा दिया था, अकेला। कितना शक्तिशाली था अर्जुन। तो वो ऐसे अर्जुन कह रहे हैं कि उसके लिए ये संभव नहीं होता। तो भगवान भी मान लिया है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं असंशय महाबाहो। देखिए भगवान अर्जुन को क्या कैसे संबोधन कर रहे हैं? महाबाहो। महाबाहो का मतलब बहुत शक्तिशाली। भगवान एक तरह कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बहुत शक्तिशाली हो, हे अर्जुन, महाशक्तिशाली अर्जुन। परंतु तुम जो कह रहे हो उसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, असंशयं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की। असंशयं महाबाहो, तुम जो कह रहे हो हे महाबाहो कुंती पुत्र, वो सही है। असंशयं मनो दूर निग्रहम चलम, सही है कि मन चंचल है और उसको दमन करना, उन मन को वश में लाना बहुत ही कठिन है। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं? कठिन है परंतु असंभव नहीं है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ये कठिन है परंतु असंभव नहीं है। तो उसके कारण भगवान बाद में क्या कह रहे हैं? अभ्यास है ना तू कौंतेया, मन को तुम वश में लाने का अभ्यास करोगे सही तरीका से, अगर तुम अभ्यास करते रहोगे और वैराग्ये न चिगृज्यते। वैराग्ये न मतलब भौतिक विषय से जब आशक्ति रहित हो जाओगे, भौतिक विषय के प्रति अनाशक्त होकर जब तुम भक्ति मार्ग को अभ्यास करते रहोगे तब मन को वश में लाना संभव होगा। तो इसका ये भगवान का निर्देश है। तो इसका व्यावहारिक प्रयोग हम देखते हैं। कुछ समय पहले जब हम श्रीमती राधा रानी का महिमा कीर्तन कर रहा था तब मन कहां था? हाँ, मन क्या इधर उधर घूम रहा था? मन कहां था? मन वो संगीत के माध्यम जो राधा रानी के प्रति जो हमारा श्रद्धा अर्पण हो रहा था वहां पर था ना। तो देखिए मन को वश में लाना क्या कठिन है, परंतु सही ढंग से वो अभ्यास करना पड़ेगा। हम अगर आलतू फालतू काम करेंगे, भौतिक विषय के प्रति आसक्त रहेंगे, उल्टा सीधा खाना खाएंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, तो ऐसे हम अगर गलत राह में चलते रहेंगे तब मन को वश में लाना कभी संभव नहीं होगा। सही मार्ग क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनम सख्यम दास्यम आत्म निवेदनम। ये है भक्ति का नौ अंग, नवधा भक्ति। भक्ति का नौ आचरण है ना। सर इसका शुरू कैसे होता है? श्रवणम, श्रवण से, भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम। उसके बाद कीर्तनम, भगवान का महिमा कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना और सुनने के बाद दूसरे के पास भगवान के बारे में कहना, बोलना। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं, भगवान को लीला को याद करना, और पाद सेवनम, भगवान को चरण कमलों का सेवा करना, अर्चनम भगवान को पूजा करना, वंदनम भगवान को वंदना करना, भगवान को कपास भगवान के महिमा कीर्तन करते हुए इनके पास अपना हृदय की मनभाव प्रकाश करना, वंदनम सख्यम भगवान को सखा के रूप में भगवान को सेवा करना, दास्यम भगवान के दास के रूप में सेवा करना, और आत्मनिवेदनम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देना। ये करने से ये करने से मन स्वतः ही वश में आ जाएगा। ये भगवान को कहना है। तो हम क्या करेंगे? अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? भक्ति का अनुशीलन। भक्ति का अनुशीलन करने से, भक्ति का आचरण करने से, भक्ति का अभ्यास करने से क्या होता है? भक्ति का अभ्यास करने से हम अपना मन, हमारा मन को सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को जब हम भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर देते हैं तब हम बहुत ही आसानी से ये मन को भौतिक जगत से, भौतिक विषय से प्रत्याहार करके, मतलब खींच के हम भगवान की ओर ले सकते हैं। ये है भक्ति का मार्ग, और ये है असल योग जिसके बारे में इस श्लोक, इस अध्याय के अंत में जो जिसका विचार हम कल कर रहे थे, अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेशम, सारे योगियों में से मद गतेन अंतरात्मनः, जिसका मन मेरा प्रति मद गत हुआ है, जिसका मन मेरा ही चिंतन करता है, मदगतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते जो माम, श्रद्धा पूर्वक जो मेरा भजन करता है, मेरा पूजन करता है, श्रद्धावान भजते जो माम सामे युक्तो तमो मतः। और इसके साथ साथ हमको याद के रखना है कि भगवान का अंतिम उपदेश क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान को शरण लेना, और भगवान का शरण लेने से भगवान हमको रक्षा करते हैं, भगवान हमको पालन पोषण करते हैं, भगवान पूर्ण तरह हमारा कल्याण साधन करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी को? यस,
हरे कृष्ण, आपने अभी जो नवधा भक्ति बताई, नवधा भक्ति के बारे में बताया, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पूरी एक साथ नौ भक्ति करते हैं या एक भक्ति अलग?
एक भी कर सकते हो और नौ भी कर सकते हो, जितना जैसे बताया गया है कि परीक्षित महाराज केवल सुनने से उनको सिद्ध भक्ति का पूर्णता हुआ था, सुखदेव गोस्वामी से का कीर्तन से पूर्णता प्राप्त हुआ, प्रह्लाद महाराज का स्मरण से, ऐसे एक अंक का भी अनुशीलन हो सकता है और एक से अधिक अंक का भी अनुशीलन हो सकता है।
इसमें जैसे सख्य और दास्य, दो दास्यम और सख्यम, मतलब कोई मित्र के रूप में मानता है और कोई दास के रूप में मानता है, इसमें जो आपने बताया एक है सख्यम,
सख्यम
सख्यम और एक दास्यम,
दास्यम,
तो ये दोनों एक साथ कोई कैसे कर सकता है?
देखो, असल में तो सभी भगवान का दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, अपना स्वरूप में हर जीव भगवान का दास ही है, दास है। परंतु भगवान अगर उसको सखा बनाना चाहते हैं तो भगवान बना सकते, भक्त कभी नहीं सोचते हैं कि मैं भगवान का सखा बनूं, परंतु ये जो सखम के बारे में बताया गया इसका अर्थ ये है कि जो भगवान को परम सुहृत, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति, सुहृत का मतलब है एक तरह का सखा जो हृदय का सबसे नजदीक रहता है, तो भगवान वैसे हमारा सखा है, परंतु जो सख्य रस, जो वृंदावन का जो पूर्ण सख्य रस, मतलब भगवान का दोस्त बनना, भगवान का सखा बनना, ये भक्त नहीं चाहते हैं, भक्त नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान का सखा बनूंगा, भगवान भक्त सोचते हैं कि मैं भगवान का दास हूं, परंतु भगवान अगर चाहते हैं तो अपना सखा बना सकते हैं, ये भगवान का इच्छा के अनुसार होगा।
थैंक यू। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अच्छा, एमएल जुनीजा, कौन एक प्रश्न कौन लिखे? अच्छा, आपका प्रश्न है, गुरुजी क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान का परम भक्त बन सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे, पूर्ण विधि बतलाइए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान का परम भक्त अर्जुन क्या था? भगवान का परम भक्त था। और अर्जुन कौन से आश्रम में थे? तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवान का भक्त बन सकता है, संभव होता है? भगवान का भक्त का जो भक्ति, वो कोई आश्रम का स्थिति के अनुसार इसका विचार नहीं होता है, हृदय की भावना के अनुसार इसका विचार होता है। जब हृदय भगवान में के चरण कमल में पूर्ण रूप से अर्पित हो जाता है और पूर्णतः भगवान को सेवा करने का अभिलाषा रहता है और भगवान को सेवा के बिना और कुछ करना नहीं चाहता है, तब वो है भक्ति। बताया गया है, गृह था को बोने था को सौदा होड़ी बोले दाको, या घर में रहो या वन में रहो, इसमें कुछ फर्क नहीं आता है। हर समय भगवान को नाम लेते रहो, भगवान हरि, भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम, भगवान का नाम समन्वित ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र अगर हम लेते रहेंगे तो हम भगवान का भक्त बनेंगे। और शुद्ध भक्त जो है, शुद्ध भक्त कौन है, जो हर समय ही भगवान का नाम लेते हैं, सदा मतलब हर समय। और चैतन्य महाप्रभु भी बताया अपने बारे में, नाहं विप्र न च नरपतिर नापि वैश्य न शूद्र न च गृहपतिर वनस्थ ज्योतिर्वा किंतु प्रद्युन निखिल पूर्णामृताब्धे गोपी भर्त पद कमलयो दासो अनुदासो दासो। अर्थात नाहं विप्र, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, विप्र का मतलब ब्राह्मण, न च नरपति, नरपति का मतलब राजा क्षत्रिय, न मैं ना तो ब्राह्मण हूं ना तो गृहस्थ हूं ना तो क्षत्रिय हूं, वनस्थ ज्योतिर्वा मैं वानप्रस्थी या सन्नासी भी नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, वानप्रस्थी नहीं हूं, सन्नासी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, परंतु प्रद्युन निखिल पूर्णामृताब्धे गोपी भक्त पद कमलयो दासो अनुदासो दासो। मैं गोपी भर्ता, गोपियों का जो नाथ, गोपियों का जो प्रेमिक, श्री कृष्ण का दास का अनुदास का दास हूं। तो इसका मतलब भक्त कौन है, जो भक्त का दास होता है वो है भक्त, चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। ठीक है,
हरे कृष्णा। भगवान ने श्लोक में बताया है हमको कि मन को कैसे वश में किया जाए, अभ्यास और वैराग से हम मन को वश में कर सकते हैं, लेकिन जो डिवोटीज जो कपड़े पहनते हैं, मतलब जो सन्यासी जो वस्त्र पहनते हैं, वो कितना हेल्प करता है मन को वश में करने के लिए?
हाँ,
कोपिन कितना हेल्प करता है मन को वश में करने के लिए?
हाँ, देखिए जब कोई लड़ाई करने को जाता है, वो अगर सादा कपड़ा जो मामूली कपड़ा पहन के अगर लड़ाई करने जाता, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, ऐसे उसका हाथ में एक बंदूक लेके उसको अगर लड़ाई करने में भेज दिया गया तो कैसा लड़ाई करेगा? और एक सैनिक जिसको पूरा ट्रेनिंग मिल रहा है और वो यूनिफॉर्म पहन के उसको पता है कैसे अस्त्र का इस्तेमाल करना है, तो आप बताइए दोनों में कोई फर्क है ना? वैसे ही जो भक्ति का अनुकूल आचरण कर शिक्षा प्राप्त होते हैं, उसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना आसान होता है। सब कुछ के लिए शिक्षा का जरूरत होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो भगवा कपड़ा पहन के रहता है वही भक्त है और बाकी भक्त नहीं है। मतलब ये है कि भक्ति के लिए शिक्षा का, भक्ति के लिए विधि मार्ग का अनुसरण अनुशीलन करना करने से वो आसान होता है उस मार्ग में आगे।
और भक्ति के लिए ज्ञान कितना जरूरी है?
हाँ,
भक्ति के लिए ज्ञान कितना जरूरी है?
भक्ति के लिए ज्ञान, भक्ति के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान का तीन अवस्था होता है। भगवान का साथ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संपर्क क्या है, हाँ, और कैसे ये संपर्क मैं स्थापन कर सकता हूं, और ये संपर्क स्थापन करने से मेरा क्या फायदा होता है, क्या फायदा होगा, ये तीन विषय में जो ज्ञान वही है भक्ति का अनुकूल ज्ञान। और बाकी जो ऐसे जो भौतिक ज्ञान या जो मुक्ति प्राप्ति के लिए जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जरूरत भक्ति में नहीं होता है। भौतिक ज्ञान के द्वारा भक्ति साधन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी है वही केवल भक्त बन सकता है, नहीं, भक्त वही बन सकता है जो भगवान को स्वीकार करता है। मतलब जो भगवान, जो जानता है भगवान कौन है, और जिसको पता है भगवान का साथ उनका संपर्क क्या है, जिनको पता है कैसे उस संपर्क को स्थापना संभव होता है, और वो संपर्क स्थापन करने से क्या फायदा होता है, केवल इस ज्ञान का ही जरूरत होता है और कोई ज्ञान का नहीं। हरे कृष्ण, जय श्री राधा मदन मोहन की, जय श्री गौर निताय।
प्रभु जी आपके चरणों में चरण स्पर्श। मेरा एक प्रश्न ये प्रभु जी कि सुख और दुख क्या मनुष्य के पूर्व जन्म के फल है?
हाँ, सुख और दुख क्या मनुष्य का पूर्व जन्म के अनुसार मिलता है? हाँ, इसे कर्म का फल कहा जाता है। कर्म हर कार्य का प्रतिक्रिया होता है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है ना? तो हम जैसे काम करते हैं उसके अनुसार हमारा उसका फल मिलता है। जैसा भला काम करने से भला फल होता है, मिलता है, बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है। हाँ, तो भला फल के प्राप्ति कैसे होता है? सुख। हाँ, भला फल को क्या कहा जाता है? पुण्य। और बुरा काम को क्या कहा जाता है? पाप। तो पुण्य से, पुण्य के कारण हमें सुख मिलता है और पाप के कारण हमें कष्ट या दुख मिलता है। तो ये कर्म के अनुसार होता है। जैसे काम करते हैं वैसे ही काम का कार्य का फल मिलेगा। परंतु ये तो जो बात ये है, हाँ, मेरा जवाब ये है कि हाँ, पूर्व जन्म की जो कार्य, केवल पूर्व जन्म के ही नहीं, इस जन्म का भी जो कार्य हम करते हैं उस कार्य के अनुसार हमें फल मिलता है या मिलता रहेगा, ये सही है। परंतु जब हम भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो सारे कर्म से हमें छुटकारा मिल जाता है। कर्म का जो फल है वो फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। जैसे कोई कैदी अगर राजा के पास जाकर अपने आप को समर्पण कर देता है, राजा बोलेगा ठीक है इसको निकाल, इसको जो कैद का जो म्याद था उसको वो खत्म कर दो, उसको मुक्त कर दो, उसको उसको सजा और देना नहीं, भोगना नहीं होगा। वैसे ही राजाओं के राजा जो भगवान, उनके पास जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं तब भगवान हमें हमारा पाप या पुण्य ये सारे कर्मों से हमें मुक्त कर देते हैं। उसके कारण भगवान देखिए कह रहे हैं गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापीभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, तो अगर हमारा देखिए, कोई तो कष्ट भोगना नहीं चाहता है, चाहता है क्या? कोई भी कष्ट भोगना नहीं चाहता है। कष्ट हम क्यों भोग रहे हैं? पाप के कारण। और भगवान कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को उनके पास समर्पण कर देंगे तो हमें सारे पाप से उन्हें मुक्त कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? और कोई कष्ट और कोई दुख नहीं रहेगा।
महामंत्र जाप में एक एक माला में हरे शब्द का 864 बार उच्चारण हुआ है, और कृष्ण शब्द का 432 बार, और राम शब्द का 432 बार। तो जो हरे कृष्ण शब्द है तो ये किसके लिए कर रहा है?
हरे, हरे शब्द का अर्थ है हरा का संबोधन में हरे होता है। जैसे सखा का संबोधन में सखे, वैसे हरा संबोधन का, हरा संबोधन शब्द का संबोधन में सखे हरे होता है। हरा शब्द का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। ये देखिए, हरा शब्द का तीन अर्थ हो सकता है। ये हरा शब्द का हर हर हरी हो सकता है, और दो होता है हरा, ये हरा का अर्थ एक तो हरी हो सकता है या हरा हो सकता है, दोनों का ही संबोधन में हरे होता है। तो हमारे जो विचार है उसमें हरे शब्द का हरा का संबोधन में आता है, और हरा का मतलब है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का हम चाहे कृष्ण को, सर्वाकर्षक कृष्ण को पास अपना निवेदन पेश करें, या परम आनंददायक राधा रमन के पास अपना आवेदन पेश करें, सभी श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही करना होगा। चाहे वो हम कृष्ण के पास जाए या राम के पास जाए, हमको राधा रानी के माध्यम जाना पड़ेगा। तो उसके कारण कृष्ण और राम को चार बार शब्द का प्रयोग हुआ है, चार नाम का, परंतु हरे का 8 बार हुआ है। हरे कृष्ण, बोलो श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णा।